महाभूतेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्यरन्नो मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕೀ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಗುಣವ್ರತೋ ಕಾ निरूपण हुआ. गुणव्रत तीन प्रकार के थे, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत. इन तीनों व्रतों के माध्यम से, क्योंकि हम अहिंसा की ओर बढ़ते, इससे अहिंसा का ही पालन होता है, अहिंसा पुष्ट होती है, इसलिए इन तीनों व्रतों का नाम गुणव्रत यह संज्ञा सार्थक है. गुण अर्थात आत्मा का गुण, अहिंसा परमो धर्म. अहिंसा सभी धर्मों में परम धर्म है और उत्कृष्ट धर्म है. इसे अहिंसा की सिद्धि के लिए सारे व्रत ग्रहण किए जाते हैं जो शेष होते हैं. सर्वप्रथम सभी व्रतों में प्रमुख व्रत अहिंसा को ही रखा जाता है. अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह प्रमाण अनुव्रत. अनुव्रतों की जब बात चलती है तो संख्या की अपेक्षा से पांच ही अनुव्रत हैं, किंतु व्रत की जब बात चलती है तो व्रतों में संख्या की बात बारह की होती है. अनुव्रत यानी छोटे छोटे व्रत, वो पांच ही प्रकार के हैं, जो कि पंच पापों को एक देश त्याग करने से या पापों का त्याग करके वस्तुओं का प्रमाण बनाने से अनुव्रत सिद्ध होते. ये अनुव्रत वस्तुतः पांच हैं, लेकिन पांच में भी गुणों के अपेक्षा से देखा जाए तो अहिंसा अनुव्रत ही मुख्य है. इस अहिंसा अनुव्रत के विकास के लिए हमने शेष चार व्रत ग्रहण किए. अहिंसा का जन्म तब तक नहीं होता जब तक चार प्रकार के पापों को, शेष पापों को हम नहीं छोड़ते, क्योंकि असत्य के माध्यम से भी पाप होता है, चोरी के माध्यम से भी पाप होता है, कुशील भी पाप है और परिग्रह भी पाप है. और वैसे इन चार पापों के भीतर जो चार की संख्या है, इनमें भी और देखेंगे तो परिग्रह ही शेष तीन पापों का मूल है, जिनको हटाने के लिए और अहिंसा की सिद्धि के लिए हम क्या करते हैं, परिग्रह को कम करते हैं. परिग्रह को कम करने मात्र से शेष चार अनुव्रतों की सिद्धि अपने आप हो जाती है. पाप पांच प्रकार के होते हैं, इसलिए व्रत भी पांच प्रकार के होते हैं. मनुष्य के जीवन में पाप जो होता है वो पांची प्रकार से होता है, पांची तरह से होता है, इसलिए व्रत भी पांच ही प्रकार के और पांच ही तरह के होते हैं. उसमें प्रमुख व्रत कौन सा है ये पूछा जाए सभी व्रतों में बड़ा व्रत कौन है और सभी पापों में सबसे बड़ा पाप कौन है, तो इनका उत्तर अलग अलग है। व्रतों में सबसे मुख्य व्रत अहिंसा को ही माना है, क्योंकि धर्म ही अहिंसा पूर्ण है। अहिंसा परमो धर्म है, अपरिग्रह परमो धर्म है ये नहीं कहा, सत्यो परमो धर्म ये नहीं कहा, क्या कहा है? अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा रूप धर्म की सिद्धि के लिए शेष चार व्रत ग्रहण किए जाते हैं, सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह प्रमाण। और इन व्रतों को अच्छी तरह से पालन करने के लिए और अहिंसा का विशेष रूप से विकास होने के लिए, अहिंसा अनुव्रत की विशेष रूप से सुरक्षा रखने के लिए और वृद्धि करने के लिए गुणों व्रतों का उल्लेख हुआ। गुण व्रत यानी गुण अहिंसा ही गुण है, उस अहिंसा की पुष्टि के लिए कितने प्रकार के गुण व्रतों का पालन करो, तो कहते हैं तीन प्रकार का पालन करना चाहिए। कौन कौन से? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत। इनको लेने से क्या होता है? क्या होता है? तो अहिंसा की सिद्धि होती है। बाहरी देश को त्याग कर स्वदेश में रहने से क्या होता है? तो बाहरी देश की सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार की हिंसा रुक जाती है, बिल्कुल नहीं होती। जिस प्रकार से मुनि अपने जीवन में समस्त पांचों प्रकार के पापों को, यानी स्थूल भी और सूक्ष्म भी दोनों प्रकार के पापों को त्याग करके अहिंसा महाव्रती कहलाते हैं, उसी प्रकार श्रावक भी यदि दिग्व्रत धारण करता है, सभी व्रतों में एक ही ऐसा व्रत है जो श्रावक को महाव्रत की कल्पना दिलाता है, एक ही व्रत है, कौन सा? दिग्व्रत। दिग्व्रत की अपेक्षा से श्रावक में महाव्रति की कल्पना की है, क्योंकि वह श्रावक बाहर देश में जाएगा नहीं। कोई व्यापार उद्योग हिंसा की अपेक्षा से जो कार्य होते हैं वो कार्य करेगा नहीं, तो स्थूल हिंसा भी रुक गई और सूक्ष्म हिंसा भी रुक गई, इसलिए यहाँ पर इस व्रत की अपेक्षा से श्रावक में महाव्रत की कल्पना की। कितना महान है ये व्रत? दिग्व्रत बहुत महान है। सभी व्रतों में पहला व्रत ग्रहण करने योग्य तो दिग्व्रत ही है। दिग्व्रत लेने से एक सीमा आ जाती है, हिंसा के लिए एक मर्यादा आ जाती है, उसके भीतर हम रह करके अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, शेष प्रदेश में आवागमन हमारा रुक जाता है। तो दिग्व्रत का पालन करना यह भी अहिंसा की ओर बढ़ने का ही संकेत है ना? अहिंसा अनुव्रत की पुष्टि के लिए दिग्व्रत ग्रहण किया ना? परंतु दिग्व्रत को लेने से क्या अहिंसा अनुव्रत वह महाव्रत के रूप में कन्वर्ट हुआ? नहीं हो पाया। महाव्रत की जिसमें कल्पना हो रही है उसके माध्यम से भी हम अनुव्रत का ही विकास कर रहे हैं ना? दिग्व्रत के माध्यम से अनुव्रत का ही विकास हो रहा है ना? जीवन में जो पाप होता था, हिंसा होती थी, क्षेत्र संबंधी देश संबंधी होता था, उसको आजीवन पर्यंत त्याग करने से पाप तो संपूर्ण रूप से रुक गया, फिर भी हमारा अनुव्रत महाव्रत क्यों नहीं? तो इसलिए नहीं कि परिग्रह पूर्ण रूप से अभी कम नहीं हुआ है और देश के अंदर रह करके जो व्यापार उद्योग आदि हमारा चल रहा है उसमें भी तो हिंसा हो रही है। इस हिंसा के कारण से हमारा अनुव्रत महाव्रत नहीं कहलाया। वही हमने अगर परिग्रह प्रमाण को अपरिग्रह बना ले तो हमारा अहिंसा अनुव्रत महाव्रत के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और व्यक्ति महाव्रती कहलाएगा। यहां तक कि आरिकाएं मुनि के पश्चात स्थान रखती है। अहिलक उसके पीछे है, क्षुल्लक उसके पीछे है, प्रतिमाधारी एक एक प्रतिमाधारी दसवीं नौवीं आठवीं आदि नीचे की प्रतिमाधारी उसके पीछे है, आरिका उसके पीछे मुनि के पीछे, पद की अपेक्षा से आरिका का पद महान है और अहिलक क्षुल्लक का पद नीचे है, बाद में है, पीछे है, क्यों है? परिग्रह, परिग्रह, परिग्रह में मूर्छा आरिका को नहीं है और अहिलक को मूर्छा सिद्ध होती है। इस अपेक्षा से आरिका के पास भी मूर्छा न होने पर भी और वस्त्र होने पर पंचम गुणस्थान सिद्ध होता है, आसक्ति नहीं है। एक वस्त्र के प्रति भले ही मूर्छा भाव हो, मंद कषाय हो, लेकिन मूर्छा का अभाव तो नहीं है। वस्त्रादि के प्रति रागादि भाव तो विद्यमान रहते ही हैं। वस्त्र हो और रागादि भाव न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जहां वस्त्र है वहां पर रागादि भाव नियम से होना ही चाहिए। यदि ऐसा हो जाए कि वस्त्र तो है लेकिन मूर्छा भाव सर्वथा नहीं है, ऐसा सिद्ध हो जाए तो आरिका को महावृत्ति कहना ही पड़ेगा, आरिका को छठा गुणस्थान मानना ही पड़ेगा। और आरिका को छठा गुणस्थान हो जाए तो श्रेणी क्यों नहीं चढ़ेगी फिर? नहीं, श्रेणी तो नहीं चढ़ सकती महाराज, क्योंकि उनको चार ही सनन मिलते हैं, चौथा पांचवा तीन ही सनन मिलते हैं, चौथा पांचवा छठा, और श्रेणी कैसे चढ़ सकती है? क्योंकि श्रेणी चढ़ने वाले पहले दूसरे और तीसरे सनन वाले होते हैं, तो श्रेणी नहीं चढ़ना हो तो नहीं चढ़ो। लेकिन महावृत अगर सिद्ध हो गए तो छठा और सातवां गुण स्थान तो होता ही है ना, तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वस्त्र के कारण से आरिका के पास मूर्छा भाव होना सिद्ध है, भले ही अहिलक की अपेक्षा से मंद कषाय है। तीव्र कषाय का तीव्र कषाय संबंधी मूर्छा भाव नहीं है, ये ठीक है, लेकिन मूर्छा का अभाव सिद्ध नहीं कर सकते। कषाय मंद रहती है, ये ठीक है, वस्त्र में अपेक्षा भाव नहीं है। अहिलक वस्त्र को छोड़ सकता है लेकिन छोड़ नहीं रहा है, इसलिए मूर्छा भाव सिद्ध है। छोड़ सकने की अवस्था है, पात्रता है, लेकिन नहीं छोड़ रहा है, इसलिए मूर्छा भाव सिद्ध है। और आरिका से कषाय की तीव्रता है, प्रत्याख्यानावरणी कषाय का तीव्रोदय वहां सिद्ध होता है। हाँ, आहिलक भी यदि मुनि दीक्षा का विचार बना ले तो वो आरिका के समान हो जाएगा, आरिका से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक यह संकल्प न ले, यह विचार न कर ले कि मुझे मुनि बनना है, तब तक अहिलक को मंद कषायी नहीं कह सकते। और अहिलक मंद, अहिलक महाराज मंद कषायी हो जाए तो आरिका से आगे निकल जाएंगे। सही है ना? अहिलक अगर ये कहें कि मुझे कल मुनि दीक्षा लेना है तो आरिका से आगे निकल गई। लेकिन जब तक मुनि दीक्षा के परिणाम नहीं है और लंगोटी में अपेक्षा भाव है, तब तक वो आरिका के पीछे है। ये सब क्या है? ये सब परिग्रह के कारण से ही ऐसा हो रहा है। अर्थ ये हुआ, श्रावक दिग्वृत्ति होने पर भी अनुव्रत उसका महाव्रत नहीं है, लेकिन दिग्वृत्त की अपेक्षा से उसके महाव्रत की कल्पना की है, कल्पना की है, महावृत्ति नहीं। दिग्वृत्त में महावृत्त की कल्पना की गई है, दिग्वृत्त की अपेक्षा से एक श्रावक दूसरे प्रतिमाधारी श्रावक महावृत्ति मुनि के समान है, उसकी कल्पना की गई है। महावृत्ति नहीं, महावृत्ति के समान हिंसा छूट गई एक क्षेत्र का, लेकिन बाकी क्षेत्र की हिंसा तो विद्यमान है। इसलिए महावृत्ति की कल्पना हम पूर्णतः नहीं कर सकते, केवल दिग्वृत्त की अपेक्षा से महावृत्ति की कल्पना हो ससकती है। ये चर्चा रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ में बहुत विस्तार से किया है, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। दिग्वृत्ति श्रावक किस प्रकार से महावृत्ति सिद्ध होता है, महावृत की कल्पना किस प्रकार से उनमें किया जाना चाहिए, इसकी चर्चा बहुत अच्छी है। तो यहाँ अनुवृत्त का गुणवृत्तों का निरूपण हुआ। ये गुणवृत्त गुणवृत्त संज्ञा को इसलिए प्राप्त हैं, अहिंसा ही महान गुणवृत्त कहलाता है। वह आत्मा के अंदर वही धर्म है, वही गुण है, वही श्रेष्ठतम साधना का एक ध्येयभूत हमारा धर्म है। अहिंसा को हम साधते रहते हैं, इसलिए इन गुणवृत्तों को उस अनुवृत्त के विकास में सहयोगी होने से गुणवृत्त यह संज्ञा उसको दी गई है। आगे हम देखेंगे शिक्षावृत्त किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। प्रश्न नंबर है 218, पेज नंबर 75। जिन व्रतों का पालन करने से मुनि आरिका बनने की शिक्षा प्राप्त होती है, उन व्रतों को शिक्षाव्रत कहते हैं। शिक्षाव्रत चार होते हैं, सामयिक शिक्षाव्रत, प्रोषितोपवास शिक्षाव्रत, भोगोपभोग परिमाण शिक्षाव्रत और अतिथि संविभाग शिक्षाव्रत। इन चार शिक्षाव्रतों के माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। कैसी शिक्षा? मुनि बनने की शिक्षा, आरिका बनने की शिक्षा। आरिका बनने की शिक्षा कहना ये उपचार मात्र है, यहाँ पर मुख्य रूप से मुनि बनने की शिक्षा मिलती है। आरिका को इसलिए लिया कि स्त्री पर्याय में यदि 11 प्रतिमा धारण कर ले या 2 प्रतिमा धारण कर ले कोई, तो उनके पास भी शिक्षा व्रत हुआ करते हैं। किंतु आरिका व्रत को ले रहे हैं तो उनको शिक्षा व्रत दिए नहीं जाते, आरिका को शिक्षा व्रत नहीं होते, क्योंकि आरिका प्रतिमाधारिणी नहीं होती। आरिका को सीधा उपचार महाव्रत दिए जाते हैं, और इसलिए पीछे से आने वाले जो हैं आरिका व्रत को लक्ष्य बना करके आती है। अन्य श्राविका 11वीं प्रतिमाधारी, 10वीं प्रतिमाधारी, 9वीं प्रतिमाधारी, जो भी जितनी प्रतिमा ली है दूसरी प्रतिमा से लेकर ऊपर की जो प्रतिमाएं हैं सभी में शिक्षा व्रत का पालन होता है, किंतु आरिका शिक्षा व्रत का पालन करने वाली नहीं कहलाती, क्योंकि उनको उपचार से महाव्रत दिए जाते हैं, उनको एक भी प्रतिमा नहीं दी जाती, आरिका की प्रतिमाएं नहीं होती। यदि आरिका को प्रतिमा दी जाए तो आरिका को उत्कृष्ट श्राविका कहना पड़ेगा, जैसे आइलक को और छुल्लक को श्रावकों में उत्कृष्ट श्रावक कहा, ऐसा व्रत धारण परिग्रह वस्त्र धारण करने के कारण आरिका को यदि हम प्रतिमाधारी की कल्पना करने लग जाएं, तो आरिका में प्रतिमा तो होती नहीं, और कल्पना करेंगे तो उनको कहना आरिका कहना नहीं पड़ेगा, उनको या तो छुल्लिका कहना पड़ेगा या तो उत्कृष्ट श्राविका कहना पड़ेगा, उपचार महावृत्ति नहीं कह सकती। आरिका फिर छुल्लिका, फिर आरिका पद का अभाव हो जाएगा। वस्तुतः देखा जाए, देखो खंड की अपेक्षा से हम आर्यखंड के निवासी हैं। आर्य का अर्थ होता है मुनि, आरी, और आरिका का अर्थ होता है आरिका, आर्य खंड में रहने वाली उपचार महाव्रत धारिणी एक स्त्री, पर्याय से स्त्री किंतु उपचार से आरिका, और आर्य खंड की उत्कृष्ट अवस्था, स्त्री पर्याय में आर्य खंड की उत्कृष्ट अवस्था, आर्य खंड का पूर्णतः सदुपयोग। क्या बताया? आर्य खंड में जन्म लेने का उत्कृष्ट उस क्षेत्र का सदुपयोग। हम कहां जन्मे हैं? आर्य खंड में। उस खंड का सदुपयोग हो रहा है क्या दुरुपयोग? बोलो, सदुपयोग हो रहा है। यदि प्रतिमाधारी बन रहे हैं, आरिका बन रहे हैं, सदुपयोग, अन्यथा इसका दुरुपयोग। आर्य बनने के लिए जो खंड मिलता है उसका नाम आर्यखंड, और आर्यखंड में तो आए और संसार करने का ही खंड ले लिया, ठेका ले लिया, तो ये आर्यखंड का दुरुपयोग। कहने का तात्पर्य, मुनि को आर्य कहा, सही आर्य तो मुनि हैं। आर्यखंड यह साधना के लिए मिलता है, योग धारण करने के लिए मिलता है, भोगों के लिए नहीं मिलता, इंद्रिय विषयों के लिए नहीं मिलता है ये। हाय, फिर वो क्यों किया? जो काम अपना नहीं था उसको क्यों किया? तब अज्ञान में, अंधकार में हो रहा है, अमावस्या के अंधेरे में हो रहा है सब, अज्ञान में ही हुआ है। वस्तुतः हमने कई बार आर्यखंड को पाया, जन्म ले लिया, लेकिन किया क्या? आत्मा को भूल गए। आर्यखंड यह नाम वस्तुतः सार्थक था, उसका चिंतन भी नहीं किया कि हम किस खंड में जन्म लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्यों मिला है, हमको क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या है, इसको सोच ही नहीं पाए। इसका विरुद्ध क्षेत्र है भोग भूमि, आर्य भूमि और भोग भूमि, या तो मिलेच्छ खंड समझो उसको, या तो देवगति समझो। देवलोक इंद्रिय विषयों के लिए, मिलेच्छखंड इंद्रिय विषयों के लिए है, भोग भूमि इंद्रिय विषयों के लिए। यहां जन्म लेने वाले जीवों को व्रत धारण करना, आर्य बनना संभव है क्या? कहां? स्वर्ग में, भोग भूमि में, मिलेच्छखंड में। यहां जन्म लेने वाले जीव एक भी संयमी नहीं बनता, एक भी संयमी नहीं बनता, और ऐसा ही होना चाहिए था। यहां भी आर्यखंड में जन्म लेने वाला जीव एक भी असंयमी नहीं बनता, ऐसा होना चाहिए था क्या? नहीं। क्षेत्र धर्म से देखो, विचार करो जरा, क्षेत्र धर्म क्या कहलाता है? जिस क्षेत्र में जन्म लेने पर वही काम करना चाहिए, क्षेत्र के अनुरूप होना चाहिए ना। भोग भूमि संज्ञा है तो योग भूमि तो है ही नहीं वो, और ये योग भूमि है, इसको आर्य खंड कहा है, लेकिन ये दुर्लभ है ना। आर्य खंड सभी खंडों में दुर्लभ, स्वर्ग से दुर्लभ, मिलेच्छ खंड से दुर्लभ, भोग भूमि से दुर्लभ, कुभोग भूमि से दुर्लभ, असंख्यात द्वीप समुद्रों से दुर्लभ, और है भी कितनी? ये 170 आर्यखंड हैं, 170 ही हैं, और मध्यलोक में कितने भूमियां हैं, कितने समुद्र हैं, असंख्यात, असंख्यातों में केवल 170 इनकी संख्या है, दुर्लभ है कि नहीं? नहीं, दुर्लभ में ही जन्म लेते हैं ना, दुर्लभ यानी आर्य खंड दुर्लभ हैं। संख्या इनकी कितनी दुर्लभ हो गई, असंख्यात तो सुलभ है, कहीं भी जन्म ले सकते आप। तीन लोक का विस्तार बहुत बड़ा है, कहीं भी जन्म ले सकते, सुलभ है, किसी भी क्षेत्र में जन्म लेना सुलभ है। लेकिन 170 में जन्म लेना बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। ये खंड भी दुर्लभ और यहाँ का जन्म भी दुर्लभ। ये 170 अल्पसंख्यक है, लेकिन दुर्लभ होने से ही अल्पसंख्यक है ना। बहुत सारे होते तो संख्या में तो सुलभ कहलाते, आर्यखंड सुलभ है, सब जगह सुलभ है, ऐसा कहलाते, ऐसा ही नहीं। आर्यखंड बहुत दुर्लभ, 170 ही इनकी संख्या है। असंख्यात भोग भूमिया है, ढाई द्वीप के बाहर जितनी भी भूमिया है वो सब भोग भूमि, और वो असंख्यात है। तो इंद्रिय विषय भोगने के लिए तो असंख्यात स्थान है, लेकिन यहां आने पर अगर वही याद आता है और वही करने लगते हैं तो ये आर्य खंड का महत्व आपने समझा नहीं। ये चिंतन करना चाहिए, और ये चिंतन न करने के फलस्वरूप ही हम आर्य खंड में जन्म लेकर भी भोगों में उलझ जाते हैं। क्या करना है? असंख्यात द्वीप समुद्रों में जन्म लेकर अनंत बार भोग में उलझ गए थे, बस हो गए ना। अब क्या करना है? एक बार योग में उलझ जाओ, छोड़ो, कल्याण हो जाएगा। योग दुर्लभ है, आर्यखंड मिला है ये भी दुर्लभ है, जन्म क्षेत्र दुर्लभ था वो मिल गया। अब पुरुषार्थ दुर्लभ है, उसको भी जरा सा कर लोगे तो ये आर्यखंड सफल हो जाएगा। भोग भूमि का जीव एक भी दीक्षा नहीं लेता, थोड़ा सा भी साधन नहीं कर पाता। वहां पर चार ही गुणस्थान हैं, एक भी पंचम गुणस्थान वर्ती नहीं बन सकता, साधना नहीं कर सकता। आर्यखंड में हम साधना करने की योग्यता पात्रता रखते हुए भी साधना नहीं करते। ये अंधकार है क्या? नहीं, जीवन का, जीवन की रात है क्या? नहीं। इस रात में कब तक चलोगे? गिरने का भय, इसलिए कहा बार बार आर्यखंड मिलने पर भी जिस जीव ने साधना के प्रति ध्यान नहीं दिया, आत्मा की साधना नहीं की, धर्म साधना नहीं की, उसको पुनः आर्यखंड प्राप्त होता नहीं। कर्म भी अपना दंड देते हैं। अरे हमने तो आर्यखंड 8 बार दिया आपको, कुछ नहीं किया, चलो अब अब चलो निगोद यात्रा करो। और वहां से आना कोई गारंटी नहीं कब आओगे, अनंत काल व्यतीत हो सकता है, तब निकल सकते हैं। और निकल आ जाए तो उस समय फिर 8 बार चांस दिया जाएगा। अब चलो, नित्य निगोद से आए थे, नितर निगोद में चलो। इतर निगोद इसलिए कि 8 को आपने व्यर्थ गमाया, इसलिए इतर निगोद में आपको डालते हैं। लेकिन कब तक वहां पर रहना है आपको, ये कोई हम गारंटी नहीं देते, अनंत काल तक भी रह सकते हो। चलो वहां रहो। वहां गए, एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण का दुख भोगते हुए अनंत काल चला गया। इतर निगोद में अनंत काल रह सकते, और किसी समय में फिर ऐसा समय आया कि मंद कषाय हो गई और मनुष्यायु का बंद पड़ गया, और आकर के आर्यखंड में जन्म लिया। सीधा भी आ सकते और क्रम से भी आ सकते, पहला पृथ्वी कायिक बनो ऐसा भी हो सकता है, फिर जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, द्विइंद्री, तीनइंद्री, चौरइंद्री, पंचइंद्री, सौधनी, असौधनी, क्रम से भी आ सकते हैं और डायरेक्ट भी आ सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आना कितना दुर्लभ है, कितना कठिन है। ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट भी आ सकते हैं आप, लेकिन आपके हाथ की बात नहीं, ये तो लॉटरी जैसा, खुल गया नहीं तो नहीं। मैं निगोद जाऊंगा और लौट करके आऊंगा, आर्यखंड में ही आऊंगा, ये आपके वश की बात नहीं। कर्म जैसे घुमाएंगे वैसे घूमना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषार्थ की बुद्धि वहां नहीं चलती। पुरुषार्थ के लिए तो सौधनी पंचेंद्री बनना पड़ता है, तब पुरुषार्थ कर सकता है। एक इंद्री, द्विइंद्री, द्विइंद्री आदि जीवों में क्या पुरुषार्थ करेगा वो? मैं निगोद में हूं, मैं द्विइंद्री हूं, पहचानता है? ज्ञान अवश्य है, आत्मा भी है, समझदारी भी है, कितना तो छोटा। ये सुख है, ये दुख है, इतना ही जानता है। परंतु दुख के निवारण के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसकी साधना वो नहीं जानता। ऐसे एकेंद्री पर्याय है, ऐसा विकलत्रय पर्याय है। इस विकलत्रय में जन्म लेने के बाद भी, इतर निगोद से बाहर आने के बाद भी फायदा क्या है? फायदा तो यहां है, आर्यखंड में मनुष्य बनना। कोल्हापुर में जन्म लो और वो भी मनुष्य बन जाओ, और वो भी पंडाल में सुनकर की बातें सुनो, तो सार्थक है, अंधकार मिटेगा। चार महीने में तो जीवन का अंधकार मिट गया है ना, जीवन का रहस्य समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए था और क्या कर चुके हैं और क्या करना पड़ेगा अब शेष जीवन में, ये तो पता चल गया ना। पता चल गया, पता चलने के बाद अब अंधकार में कभी भी घूमना नहीं, ब्लैक होल के तरफ नहीं जाना। ब्लैक होल नरक, ब्लैक होल की चर्चा तिलोविपन्नति में आई है। एक ब्लैक होल नाम का एक क्षेत्र है जिसमें अंधकार ही अंधकार पाया जाता है। वहां पर कोई देव विमान भी चला गया, कितना भी प्रकाश वो कर ले, प्रकाश काम ही नहीं करता, इतनी घनीभूत अंधकार है, प्रकाश को पी लेता है वो अंधकार। ऐसा ब्लैक होल में देव विमान घूम गया तो भटक जाता है कई बार, और फिर वह अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है उस देव को, विमान काम नहीं कर पाता और आंखों से हम किधर जाएं ये दिखता है नहीं। जैसे बरमूडा ट्रायंगल में क्या है पता नहीं चल रहा है ना, वैसा ब्लैक होल में पता नहीं चलता कि हम कहाँ आ गए और किधर जाना चाहिए, प्रकाश का रास्ता कौन है, किधर है, और है उसकी सीमा, गोल एक प्रदेश है, वो अंधकार ही अंध, ऊपर से लेकर नीचे तक नरक तक अंधकार ही, मध्यलोक में भी है अंधकार, उसको ब्लैक होल कहा है। देव विमान भटकता है और ये कहां तक है, स्वर्ग में भी, स्वर्ग तक गया है ये। ऐसे ब्लैक होल में देव विमान काम नहीं कर पाता, किधर जाना समझ में नहीं आता, तो वो देव सोचता है क्या करूं, अब अवधि ज्ञान के बिना कोई उपाय नहीं, अवधि ज्ञान होता है इसलिए निकल आता है, नहीं तो भटक जाता है, बाहर आने का कोई सवाल नहीं, और असंख्यात योजन पर्यंत वो विस्तार है उसका, ब्लैक होल का। आर्यखंड में जन्म लेने के बाद इंद्रिय विषयों के तरफ जाना ही ब्लैक होल के तरफ जाना है। बरमूडा, इस बरमूडा में इंद्रिय विषयों के मरगुणा में एक बार फंस गए तो बाहर नहीं आ सकते, और जो बाहर आ गए उन शक्तिशाली है, पुरुषार्थवादी है। इंद्रिय विषयों से हर बाहर निकला कोई जीव तो महान भाग्यशाली है, वो महान भाग्यशाली। उससे बढ़कर के शक्तिशाली कौन है? इंद्रिय विषयों को भूलने की शक्ति जिसमें हो वो महान योगी है। देवता उसके चरण छूकर जय जिनेन्द्र कहते हैं। इंद्रिय विषयों को भूल गए तो हम पंचम गुणस्थान वर्ती बन गए। देवावितस्य पनमंति जस्य धर्मे सया मनु, जिसका मन त्याग रूपी धर्म में, इंद्रिय विषयों के त्याग रूपी धर्म में निरंतर लगा हुआ है, देवावितस्य पनमंति, उसकी वंदना देवलोक भी करते। ऐसा आर्यखंड प्राप्त हुआ है तो चूकना नहीं। अब 27 नक्षत्रों की जगह नक्षत्रों की संख्या बढ़नी चाहिए, बढ़ेंगे नक्षत्र बढ़ेंगे कि नहीं? विचार करो, जीवन में कुछ नहीं, जाते जाते कोई पाथे ले चलो साथ में। संयमी बनेंगे तो भी मरेंगे, और ऐसा ही रहेंगे तो भी मरेंगे। अतः अच्छा यही है, कुछ साल जीवन के जो बचे हैं उसमें संयमी बनकर के ही मरेंगे तो कितना अच्छा है। असंयमी रहेंगे तो मरेंगे, संयमी बनेंगे तो मरेंगे, इन दोनों से अच्छा है कि हम संयमी बन के मरे और संसार सागर से तरे, और यही खरे। प्रयत्न करे तो सब सुलभ है, प्रयत्न नहीं करे तो अंधकार है, ब्लैक होल है। समझ आवश्यक, जागना आवश्यक, और ये कोई कठिन बात नहीं। इसको पहाड़ मत समझो प्रतिमाओं को। थोड़ा प्रमाद छोड़कर जीवन जीना शुरू करोगे तो निश्चित रूप से ये प्राप्त होंगे। थोड़ा प्रमाद छोड़ना है, पानी भर लाना है कहीं से ढूंढ करके स्टॉक करना है। जैसे गेहूं और जार अगर धान वगैरह एक साल के लिए स्टॉक करते हैं, क्या पानी की चिंता नहीं करोगे? हाँ, ये पुरुषार्थ आप लोगों को करना चाहिए। अगर महिलाएं पुरुषार्थ करें ना तो पूरा घर सुधर जाएगा, क्योंकि खाना शुद्ध ही बनेगा तो खाना शुद्ध ही खाना पड़ेगा सबको, है ना? ये गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स कहते हैं ना। एक समर्थ अच्छी योग्य माता 100 टीचरों से श्रेष्ठ, उनका स्थान 100 टीचर, यानी एक माता में 100 टीचर समा गए हैं। क्यों? घर को सुधार सकती है मां, घर को सात्विक बना सकती है माता। माता को माइनस कर दो तो माता ठुकने लग जाएगा आपका। माता को माइनस कर दे तो कुछ नहीं, पिता पिता तो माता के बाद है, और कहते समय भी हम माता का ही पहले नाम लेकर कहते। पिता माता कभी कहते नहीं, माता पिता, आई वडिल कहते हैं, वडिल आई कहते हैं, कभी सीताराम कहते हैं, लेकिन स्त्री का पहला नाम आता है, क्योंकि पुरुष से स्त्री आदर्श है, इसलिए स्त्री का नाम पहले उच्चारण किया जाता है। नमो अरहंता नाम जैसे कहते हैं ना, है बड़े सिद्ध भगवान, लेकिन अरहंत का नाम पहले क्यों? इसलिए कि सिद्धों को बतलाने वाला और अपने को सिद्ध बनाने का आदर्श मार्ग बतलाने वाला अरहंत भगवान है। तो इसलिए हम अरहंत को पहले जिस नमस्कार करते हैं वैसे ही आई वड़ी माँ को महत्व दिया गया, क्योंकि परिवार को आदर्श बनाने का सारा श्रेयस किसको है? माँ को है। एक माँ सुधर गई तो घर सुधर गया, और माँ अगर नहीं सुधरी घर सब बिगड़ गया। आज भी जो 60 साल 70 साल 80 साल हो गए उनके विचारों में भी ऐसे विचार हैं कि जो छोटे छोटे उम्र वाले आगे बढ़ रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, उनको देख करके वो कहते हैं इतनी जल्दी क्यों आपने प्रतिमा धारण कर ली। अरे, और वो भी पूछ सकता है फिर, वृद्धावस्था में तो प्रतिमा धारण करना चाहिए था, मेरी गलती हो गई, लेकिन आप तो वृद्ध दिखते हैं, आपने ग्रहण नहीं क्यों नहीं किया है? इतनी उम्र हो गई है अभी क्या कर रहे हैं? अब तो सोचो, छोटी उम्र तो गई, विचार करते करते कि छोटी उम्र में तो धर्म किया नहीं जाता और आप कर नहीं पाए। अब तो सोचो, धड़ाधड़ वृद्धों को तो प्रतिमाधारी बनना चाहिए, धड़ाधड़ पहले बनना चाहिए, क्योंकि वो सोचते सोचते आ गए कि इस उम्र में हमको धारण नहीं करना है, छोटी उम्र में वृद्ध तो हो गए, तो वृद्ध तो हो गए तो अब तो सोचना चाहिए। और यदि नहीं हो सकता है तो छोटों को रोकना नहीं चाहिए, और कहना भी, मुख से उच्चारण भी नहीं करना चाहिए कि छोटी उम्र में क्यों धर्म धारण करते, अपराध है वो ऐसा कहना। आप अपनी उम्र को देख रहे हैं, एक घंटा बैठ करके कभी आप ध्यान नहीं कर सकते, कमर दर्द होता है, अब क्या धर्म साधना करेंगे? धर्म साधना तो छोटी उम्र जवानी में ही होती है। जवान ही बैठ सकता है, मिलिट्री में वृद्धों को स्वीकार करते हैं? कोई आपका घर का एक छोटा लड़का मिलिट्री में जाने का भाव कर रहा है, उसको बताओ, समझाओ, अभी क्या जल्दी मिलिट्री में जाने का, ये उम्र है क्या मिलिट्री में जाने का? जब मेरे उम्र के उगन हो गए तब मिलिट्री में जाना चाहिए। जब मिलिट्री एक भौतिक विषय है, राष्ट्र रक्षा की बात है, केवल बंदूक ही तो चलाना है वहां, और क्या करना है? वृद्ध होने पर जब आप बंदूक नहीं चला पाते तो फिर यहाँ के बंदूक तो बहुत उससे बहुत छोटे छोटे बंदूक हैं, हाथ में पकड़ना भी संभव नहीं इनको। कर्म रूपी शत्रुओं को गिराने के लिए जवानी चाहिए कि वृद्धावस्था चाहिए? जवानी चाहिए। वृद्ध होने पर मिलिट्री में जब स्वीकार नहीं करते तो उससे पहले सिद्ध है कि मिलिट्री में तो उससे पहले ही जाना पड़ता है, तो धर्म में भी उससे पहले ही जाना पड़ता। महावीर भगवान ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? और महावीर भगवान के माता पिताओं ने, आई वडिल ने ऐसा क्यों नहीं समझाया उनको कि इतनी छोटी उम्र में क्यों जा रहे हो? 28 साल की उम्र थी महावीर भगवान की जब घर छोड़े थे। उनके आई वडिल समझाते, बेटा अभी क्यों जा रहा है, हमारी उम्र का हो जा पहले, फिर बाद में तब धारण करना। महावीर कहते, तुम्हारी उम्र में जा करके मैं क्या करूँ, वहाँ मैं बंदूक ही नहीं चला सकूँगा, हाथ पांव कंपने लग जाएंगे। कर्म रूपी शत्रुओं को गिराने के लिए भी जवानी चाहिए। वहां का बंदूक तो उठ सकता है, यहां का बंदूक उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। बंदूक है कौन सा बंदूक? सामायिक शिक्षा व्रत, यही तो बंदूक है। सामायिक शिक्षा व्रत ये बंदूक है, इसको उठाओ और कर्मों को मारो। घाती कर्म बैठे हैं अंदर, चलाओ बंदूक। महाराज संभव नहीं हो पा रहा है, क्या है, क्या हो रहा है, कमर दर्द होता है और घंटों तक हम नहीं बैठ सकते सामायिक में, तो बंदूक को पहले ही क्यों नहीं उठाया? महाराज अंधकार था, ब्लैक होल में अटके थे, तो हम क्या करें? आपने अपनी अज्ञानता के कारण से जवानी खो दी विषयों में, अब धर्म करना भी चाहो तो क्या हो सकेगा? फिर भी हम कहते हैं दो प्रतिमा का पालन करके कम से कम उसका अभ्यास तो करो, बंदूक उठता है कि नहीं देखो तो सही, फिर भी हमारी प्रेरणा है कि जो हो सकता है कर लो, अच्छा ही है, कम से कम पाप से तो बचोगे। सामायिक नहीं होता सही, लेकिन हिंसा से तो बचोगे ना, परिग्रह से तो बचोगे। निकाल लो चाबी, दे दो, जो आपको चाहिए वो सब रखो और बाकी सब जिम्मेदारियां छोड़ दो, थोड़ा त्याग करो उसमें। अगर 100 है तो कम से कम 25 की चाबी तो दे दो, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए केवल समझने से कुछ नहीं होता, कुछ करना भी पड़ेगा अब। और सुन करके फायदा क्या होगा फिर? सुन करके फायदा नहीं, सुन करके उसमें से कुछ ग्रहण भी ये जीवन को सफल बनाएगा। सुनने से ही केवल जीवन सफल नहीं बनता। स्कूल कॉलेज पढ़ा, डॉक्टरेट पास किया और डॉक्टर नहीं बने तो क्या फायदा? कंपाउंडर तो बन जाओ कम से कम। डॉक्टरेट पढ़ा और कंपाउंडर नहीं बन पाए तो क्या होगा? कम से कम अनुवृत्ति, डॉक्टर का मतलब महावृत्ति, कम से कम अनुवृत्ति तो बनना ही चाहिए, व्यर्थ नहीं कमाना। तो हम शिक्षा व्रत की बातें समझा रहे थे, अभी 5 मिनट है। जिन व्रतों का पालन करने से मुनि आरिका बनने की शिक्षा प्राप्त होती है, उन व्रतों को शिक्षा व्रत कहते हैं। शिक्षा व्रत 4 प्रकार के होते हैं। सामयिक शिक्षा व्रत, देखो इसको जब हम शिक्षा व्रत का नाम सामयिक रखेंगे तो भी चलेगा, सामयिक रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि तत्वार सूत्र में इस शिक्षा व्रत का नाम सामयिक नहीं आया, सामयिक आया। और रत्नगण श्रावकाचार्य ग्रंथ में सामयिक नहीं आया, सामयिक आया। ये दोनों अपने अपनी जगह अपेक्षाकृत कथन है, ठीक है। क्या कथन है तो इस बात को समझे, सामयिक जब शब्द आता है तो इसका मीनिंग होगा समता भावो सामयिक, यानी समता शब्द से अर्थ रखते हुए सामयिक शब्द की उत्पत्ति हुई। समता शब्द से सामयिक बनता है और समय शब्द से सामयिक बनता है। सामयिक माने म, सामयिक तो क्या मतलब है? समता श्रेष्ठ है क्या समय श्रेष्ठ है? समता श्रेष्ठ है, समय श्रेष्ठ नहीं। समय एक पाबंदी का नाम है, एक मर्यादा का नाम है, एक काल मर्यादा उसमें विद्यमान है। श्रावक सामायिक की शिक्षा ले रहा है, मुनि महाराज जो सामायिक करते हैं ना उसमें समता है। सामायिक जो कहते हैं वो मुनि के व्रतों को ही सामायिक कहते हैं। जैसे षड आवश्यकों में, मुनि के षड आवश्यकों में प्रथम षड आवश्यक है सामायिक आवश्यक क्रिया, सामायिक। तो यहां पर सामायिक का अर्थ होता है निरंतर समता भाव रखना, पर वस्तुओं को देखकर राग द्वेष आदि भाव नहीं करना, निरंतर समता भाव रखना, शुभ परिणामों से और अशुभ परिणामों से बचकर आत्मा में लीन रहना, ये तो ध्यान हो गया। किंतु हर्ष विषाद को छोड़ने का प्रयत्न करते हुए जो गुप्ती को धारण करते हैं, ये सामयिक क्रिया, सामयिक क्रिया जिसको छठे गुणस्थान से लेकर के नवे गुणस्थान तक होने का कहा है। सामयिक संयम किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक होता है? छठे गुणस्थान से लेकर नवे गुणस्थान तक होता है सामयिक छदोपस्थापना। ये सामयिक चारित्र चारित्र कहलाता है। इस चारित्र में समता भाव आ जाता है। समता भाव को धारण करने वाला बन जाता है। और सामयिक आवश्यक क्रिया जो होती है, यह आवश्यक क्रिया विशेष रूप से ध्यान की सिद्धि के लिए बताया गया है। कम से कम 3 बार सामयिक, क्या है ये 3 ही बार का ऐसा कोई हम पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि ध्यान करने वाले जीव को 3 ही बार का या 2 ही बार का ऐसा कोई पाबंदी नहीं होता। जैसे बाहुबली भगवान साल भर एक ही पर्वत पर खड़े रहे और ध्यान में लीन हो गए, तो 3 ही बार ध्यान क्यों नहीं किया उनने? रोज 3 बार करना चाहिए था, और बाकी टाइम में ध्यान नहीं करना, ऐसा नियम नहीं है। ध्यान आप कितने भी समय तक रह सकते हैं, जब ध्यान में रहते हैं तब अन्य क्रियाएं मुख्य नहीं, मुख्य क्रिया तो ध्यान ही है। सभी चारित्र में, सभी व्रतों में, सभी तप में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वह ध्यान ही है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही कर्म की निर्जरा होती है और ध्यान के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ध्यान के माध्यम से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे मोक्ष, केवल ज्ञान इत्यादि जो हैं, कर्म निर्जरा इत्यादि, ये ध्यान का आलंबन लेने पर ही होता, इसलिए ध्यान को प्रमुख स्थान है। हमारा अंतिम ध्येय ध्यान है, सभी व्रतों का अंतिम ध्येय, सभी तपों का अंतिम ध्येय ध्यान होता है। ध्यान सभी तपों का महातप है, सभी व्रतों का महाव्रत है, सभी संयम का महान संयम है, क्योंकि इसके माध्यम से कर्म की निर्जरा होती है और आत्मा कर्म के बंधन से छूटकर स्वतंत्र होता है, इसलिए इसको महत्व दिया है। हाँ, एकाग्र, यही ध्यान है, यही ध्यान है, करते हैं। तो उसको ध्यान का शिविर रखेंगे, कहाँ था ध्यान नहीं दिया उधर, तो कैसे ध्यान देंगे आपके तरफ, वो तो भूल ही गए सभी लोग, दसरा गया और आया और गया, 10 दिन घर छोड़ोगे तब सुनने को मिलेगा, 10 दिन घर छोड़ना, ध्यान ही ध्यान लगाएंगे, इधर ध्यान देना थोड़ा जो क्या कह रहे हैं, 10 दिन के लिए समय निकालना है, कब निकालेंगे सोचना है, चातुर्मास में 1 बार, 1 हफ्ते का भी निकालेंगे तो चलेगा। सामयिक शिक्षाव्रत, डिफरेंस बता रहे थे, सामयिक किस शब्द से बना? समय शब्द से। और सामयिक किस शब्द से बना? समता भाव। समता भाव का होना तो मुनियों में ही संभव है, प्रतिमाधारियों में या गृहस्थों में संभव नहीं है, क्योंकि परिग्रह के कारण सतत राग द्वेष होते रहते हैं। परिग्रह का विकल्प आता है तो वो समता नहीं है, विषमता है। तो समता की सिद्धि परिग्रह दशा में नहीं है, इसलिए समंतभद्र स्वामी ने क्या किया, श्रावक के उस ध्यानाभ्यास को जो शिक्षाव्रत है, सामयिक शिक्षाव्रत, इसमें ध्यानाभ्यास को अभ्यास ही कहना चाहिए, इसको सामायिक कैसे कहें, ऐसा विचार करके उन्होंने क्या किया, सामायिक नहीं कहना। यद्यपि है तो सामायिक का अभ्यास, लेकिन सामायिक नहीं है ये। वो जो कर रहा है, प्रैक्टिकल में आ रहा है, वो सामायिक नहीं है, वो सामयिक है। क्योंकि कर भी रहा है तो सीमित समय के लिए क्या करता है वो, मैं एक घंटे के लिए यहाँ बैठकर ध्यान करूँगा, सामायिक का अभ्यास करूँगा। अभ्यास करने का लक्ष्य तो सामायिक का है, किंतु करूँगा तो सामयिक ही कर पाऊँगा ना। मेरे प्रैक्टिकल में जो हो रहा है वो सामायिक नहीं होता, सामयिक होता है ना। तो इस शिक्षा व्रत का नाम कंपलसरी सामायिक, सामयिक करो, यानी समय को बांधो और ध्यान में बैठो, समय को बांधो और ध्यान में बैठो। समय को कैसे बांधें, तो ऐसे बांधें सभी विकल्पों को दूर करो, सांसारिक, इधर जाना उधर जाना वो जाना ये जाना, और मोबाइल स्विच ऑफ भी करो, उसका विकल्प रख करके सामायिक मत करो, क्योंकि वो बजने लग जाए तो ध्यान जाएगा ही उधर, कौन बुला रहा होगा, ये विकल्प आएगा क्या, नहीं आएगा तो सामयिक नहीं होगा। तो 7-8 दिन का जब शिविर करेंगे ना, उस समय सब ये चीजें घर में जमा करके किसी को आना है, घर जाने का ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वैसा होगा तो ही वो ध्यान करा सकेंगे, अन्यथा ये कोई उपदेश नहीं है। ध्यान का मतलब, उपदेश तो अभी भी हो रहा है, लेकिन सामयिक क्या होता है उसको हम प्रैक्टिकल रूप में आपको समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि विकल्प रहेंगे, पास में मोबाइल रहेगा, उधर बुला रहे हैं तो विकल्प आएगा, तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान की अनुभूति हम सिखा नहीं सकेंगे। और ध्यान को सिखाना है, केवल कहना नहीं है। ध्यान के संबंध में कहना चाहो तो हम 10 दिन तक सुना सकेंगे, लेकिन सुन करके फायदा क्या है, उसका क्या आनंद आएगा। आप केला खाना है तो केले का कथन करते हुए ही हम बैठेंगे और आप केले की महिमा को सुनते ही रहेंगे, तो केला खाने जैसा अनुभव आएगा क्या? तो केला तो कहता है अकेला हूं हो जाओ, पहले अकेले बने में बने बिना मैं खाने को मिल नहीं सकता, खाते समय अकेला होना पड़ता है, समय खिसक गया है। समय यानी देखो, श्रावक समय को बांधकर उतने समय के लिए सभी परिग्रहों को भूलकर ध्यान करने का विकल्प करता है। तो एक घंटे के लिए विकल्प ना आ जाए सांसारिक कोई भी, इस प्रकार से संकल्प लेकर के समय को बांध करके वो करना सामयिक करने का नाम सामयिक। समय को बांधा है तो सामयिक, और उस समय को बांध करके उतने समय में क्या कर रहा है, समता को लाने का प्रयत्न कर रहा है। एक घंटे तक कोई भी राग द्वेष ना आए, समता बचे, ये अभ्यास कर रहा है। लेकिन आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि बैठते समय ही ये विकल्प करके बैठा है। एक घंटे के लिए बिल्कुल मरण का समय भी आ जाए तो एक घंटे के भीतर हम यहाँ से नहीं उठेंगे, सामायिक करेंगे। लेकिन एक घंटे के बाद तो उठूंगा, तो एक घंटे तक मैं नहीं उठूंगा, इसके साथ साथ एक घंटे के बाद उठूंगा, ये राग चल ही रहा है साथ में। हाँ, ऐसा सामायिक करना आसान नहीं, आपको मुनि बने बिना तो असंभव ही है ये। मुनि को कोई विकल्प, जब भी बैठे तब ध्यान लग जाता है, इधर उधर के सांसारिक बातें ही नहीं उनके सामने, और आपके सामने बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इसलिए समय को बांधकर एक घंटे के लिए इन विकल्पों को त्यागते हैं, विकल्प ही त्यागते हैं, लेकिन एक राग को त्याग नहीं सकते। एक घंटे के बाद मैं जाऊंगा, ये राग साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और हो सकता है एक घंटा पूर्ण होता आया और पूर्ण हुआ कि नहीं, घड़ी की तरफ ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अभी भी जा रहा है, प्रवचन खत्म होने का टाइम आया कि नहीं तो इसी का नाम राग है। राग अगर ना हो तो ये विकल्प आते ही नहीं। राग को छोड़कर सामायिक करना मुनि अवस्था में ही संभव है। राग को दूर रखकर, रागादि भावों की उत्पत्ति के कारणीभूत विकल्पों को दूर रखकर कुछ समय जो आप सामायिक करते हैं शिक्षा व्रत के रूप में, यह सामायिक महाव्रत का यानी षडावश्यक क्रिया का आपका अभ्यास कहलाता है। समय को बांधना अभ्यास है और समय को बांधे बिना करना ये सामायिक है। ये मुनि को होता है, एक श्रावक को होता है। जिनवानी प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांद रहे अब ना हम विषयांद रहे अब तक हम विषयांद रहे अब ना हम